بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے آدرنیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کیجیے۔ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ حجرات کی چھٹی اور ساتویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتین کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، یدی کوئی ادھرمی کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گٹ کو انجانے میں کوئی ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشچتاپ ہو، اور جان لو کہ تمہارے بیچ ایشور کے پیغمبر موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یدی پیغمبر ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں تو उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ, परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है और कुफ्र, उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है, और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज मंगलवार है, इस वंद की 15, शाबान की 24 और मार्च की 5 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आ रहा होगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.iribi.ir, जबकि ताजा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है pastoday.ir/hi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सबसे पहले आप देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से, और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा ज़ायोनी आतंकवाद। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा कि चुनाव में जनता की उपस्थिति ईरानी राष्ट्र का जेहाद था। यमन के शूरवीर जवानों ने अरब सागर में इसराइली टैंकर को लक्ष्य बनाया। जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल की कत्ल की मशीन को अभी और समय दिया जाना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस और BRS एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने 1 मार्च को होने वाले चुनाव में मतदान केंद्रों पर जनता की भारी उपस्थिति की सराहना की और कहा कि चुनाव में ईरानी जनता की उपस्थिति एक सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व और एक जिहाद था। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने आज मंगलवार को 3 अदद पौधा लगाने के बाद कहा, दुश्मनों ने लगभग 1 वर्ष तक प्रचार किया ताकि लोगों को चुनाव में भाग लेने से दूर रख सकें और चुनाव में गहमा गहमी न हो, परंतु लोगों ने 1 मार्च को होने वाले चुनाव में भाग लेकर दुश्मनों के प्रयासों को नाकाम कर दिया। इस आधार पर ईरानी राष्ट्र का ये प्रयास एक जिहाद था। इसी प्रकार सर्वोच्च नेता ने चुनावों से जुड़े अधिकारियों व जिम्मेदारों की प्रशंसा व सराहना की। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने इसी प्रकार सिस्तान व बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिणी भागों और दक्षिण पूर्व ईरान में आने वाली बाढ़ और उससे लोगों को होने वाली क्षति की ओर संकेत किया और बल देकर कहा कि सरकारी और गैर सरकारी सतह पर जो सहायता व राहत कार्य हो रहे हैं उन्हें जारी रहना चाहिए और जो लोग सहायता कर सकते हैं उन्हें सहायता करनी चाहिए। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने इसी प्रकार वृक्षारोपण दिवस की ओर संकेत किया और वृक्ष को मुनाफे वाली पूंजी का नाम दिया और कहा कि वृक्ष के बहुत फायदे हैं, जैसे ऑक्सीजन में वृद्धि और प्रदूषण से मुकाबला। इस आधार पर वृक्ष एक मुनाफे वाली पूंजी है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने प्रकृति और इंसान के संबंध और प्रकृति के ध्यान रखने पर इस्लाम के दृष्टिकोण की ओर संकेत किया और कहा कि फिलिस्तीन के मजलूम लोगों से एकजुटता की घोषणा करने के लिए जो तीन वृक्ष लगाए गए उनमें से एक जैतून का वृक्ष था। ज्ञात है कि 5 से 12 मार्च तक ईरान में प्राकृतिक स्रोत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और पहले दिन को यानी 5 मार्च को वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ईरान के गृह मंत्री अहमद वहीदी ने बताया कि दुश्मनी ताकतों ने ईरान के चुनाव को बेरंग और नाकाम करने के लिए पूरी ताकत कई महीनों से झोंक रखी थी, लेकिन इसके बावजूद 1 मार्च के चुनाव में 25 मिलियन मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट किया। अहमद वहीदी ने कहा कि ईरानी राष्ट्र चुनाव के मंच पर एक बार फिर शानदार दृश्य पेश करने में कामयाब रहा। उनका कहना था कि पश्चिमी देशों का मीडिया और लोकतंत्र के सारे उसूलों को तोड़ते हुए महीनों से दुष्प्रचार कर रहा था कि ईरान में लोग चुनाव में भाग न लें। गृहमंत्री का कहना था कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि दुश्मन ताकतों की इंटेलिजेंस एजेंसियां और आतंकी संगठन इस कोशिश में थे कि ईरान में कई बड़ा हमला करें। अहमद वहीदी ने कहा कि चुनाव पूरी तरह फ्री एंड फेयर रहे और एक एक वोट को पूरी अहमियत दी गई। वहीं ईरान के चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि 1 मार्च को संसद और विशेषज्ञ असेंबली के लिए होने वाले चुनाव में वोट डालने वाले मतदाताओं में 48% महिला और 52% पुरुष थे। मोहसिन इस्लामी ने सोमवार की शाम मीडिया को बताया कि 45 सीटों पर मुकाबला दूसरे चरण में पहुंच गया और निरीक्षक परिषद शुराए निगहबान की ओर से चुनावों के दुरुस्त आयोजन की पुष्टि हो जाने के बाद दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ असेंबली की 88 सीटों का नतीजा स्पष्ट है और उम्मीदवार चुने जा चुके हैं। 1 मार्च को ईरान में संसद की 290 और विशेषज्ञ असेंबली की 88 सीटों के लिए चुनाव हुआ था।
गजा पट्टी में लगातार बेगुनाहों का कत्ल आम हो रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का कहना है कि इसराइल की कत्ल मशीन को अभी और समय दिया जाना चाहिए। जो बाइडन ने न्यूयॉर्कर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे विचार में इसराइलियों को अभी और थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। बाइडन ने यह बयान तब दिया जब गजा पट्टी में इसराइल के हाथों कत्ल किए गए फिलिस्तीनियों की संख्या 30,650 से अधिक हो चुकी है। बाइडन ने इसराइल के हाथों फिलिस्तीनियों के जनसंहार का बचाव करते हुए कहा कि ज़ायोनी नेतृत्व पर दबाव है कि हमास की हमले की हर क्षमता को पूरी तरह खत्म करें। उन्होंने कहा कि मेरे विचार में अब ताकत के इस्तेमाल में कमी आएगी। जो बाइडन ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई भी फिलिस्तीनी कत्ल किया जाए। फिलिस्तीन को लेकर अमेरिका की रणनीति का यही दोगलापन है कि वो एक तरफ फिलिस्तीनियों के कत्लेआम पर अपने चिंतित होने की बात करता है और दूसरी ओर इसराइल की भरपूर सामरिक मदद कर रहा है कि वो फिलिस्तीन के खिलाफ जनसंहार का सिलसिला जारी रखे।
फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी UNRWA ने कहा है कि गजा में बच्चों की अधिकतर मौतें खाने पीने की चीज़ों और मेडिकल सेवाओं के अभाव की वजह से हो रही हैं। एजेंसी ने एक्स अकाउंट पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि दुनिया की आंखों के सामने गजा के बच्चे धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। ये बयान तब आया है कि जब उत्तरी गजा पट्टी के कमाल अदवान अस्पताल में डिहाइड्रेशन और मालन्यूट्रिशन से 15 बच्चों की मौत हो गई। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल किदरा ने इस अस्पताल में 6 अन्य बच्चों की नाजुक हालत पर गहरी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ये चेतावनी भी दी जा चुकी है कि अगर मानवीय सहायता गजा पट्टी में नहीं पहुंची तो त्रासदी और भी भयानक रूप लेती जाएगी।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। यमन की आर्म फोर्सेस के प्रवक्ता यहिया असरी ने कहा है कि हमने अरब सागर में इसराइली टैंकर शिप को निशाना बनाया है और ये गजा पट्टी पर इसराइल के हमले रुकवाने के हमारे कैंपेन का एक हिस्सा है। प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि MSC स्काई नाम के समुद्री जहाज को निशाना बनाने के लिए नेवल मिसाइलों का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि मिसाइलों ने सटीक रूप से शिप को निशाना बनाया, जबकि इससे पहले लाल सागर में हमारे ड्रोन विमानों और मिसाइलों ने अमेरिकी नौसेना के युद्धक जहाज को भी निशाना बनाया था। प्रवक्ता का कहना था कि इन दोनों हमलों से साबित हुआ कि यमनी फोर्सेस एक साथ कई बड़े ऑपरेशन कर सकती हैं। यहिया सरी के बयान से पहले मीडिया रिपोर्ट में आई थी कि अदन की खाड़ी में कोई घटना हुई है। ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी और ब्रिटेन के सेक्रेटरी फर्म एम्ब्रे ने रिपोर्ट दी थी कि यमन की अदन बंदरगाह के दक्षिण पूर्व में एक जहाज में धमाके के बाद आग लग गई।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को कहा कि कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति दोनों पार्टियां एक ही पार्टी के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच चार दशक पुरानी सांठगांठ है और दोनों एक दूसरे के घोटाले को कवर कर देती है। संगारेड्डी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करने से पहले संकोच नहीं करती है। कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना नया ATM बनाया है, ऐसा व्यवहार लंबे समय तक नहीं चलेगा। भारतीय प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि परिवारवादी पार्टियों के सदस्यों ने अपना काला धन छिपाने के लिए भारत के बाहर बैंक खाते खोले हैं। परिवारवादी पार्टियों के सदस्य अपने काले धन को छिपाने के लिए भारत के बाहर बैंक खाते खोलते हैं, जबकि मैं गरीबों को जन धन खाते खोलने और उनकी वृद्धि को आगे बढ़ाने में मदद करता हूं।
पिछले सालों में भारत के कई राज्यों में विभिन्न जगहों के नाम बदले गए हैं, लेकिन मणिपुर की सरकार ने किसी भी स्थान का नाम बदलने पर सजा का प्रावधान किया है। मणिपुर विधानसभा ने सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के बिना स्थानों का नाम परिवर्तन करने को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी एक विधेयक पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को विधानसभा में मणिपुर स्थानों का नाम विधायक 2024 पेश किया था और इसे सदन में आम सहमत से पारित कर दिया गया।
भारत में स्पैनिश महिला पर्यटक रेप मामले में अन्य तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि पहले से ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जा चुका है। इस मामले में लिप्त अन्य आरोपियों की खोज जारी है। AFP की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पीताम्बर सिंह खैरवार ने बताया कि हमने अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए एक टीम बना दी है। 3 मार्च को पुलिस अधिकारियों ने तीन आरोपियों को चेहरे पर कपड़े बांधकर अदालत में पेश किया था, जिसके बाद उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया। स्पेनिश महिला और उसका पति भी अदालत में मौजूद थे। पुलिस अधिकारी का कहना था कि आरोपियों को अधिकतम सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि फोरेंसिक अधिकारियों सहित एक विशेष टीम ने घटनास्थल का दौरा किया, जबकि दूसरी टीम संदिग्धों को खोज रही है। अधिकारी का कहना था कि अलग अलग इलाकों में छापे मारे जा चुके हैं, बहुत जल्द अन्य आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। और इसी के साथ रेडियो तेरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। गजा में बढ़ता जल संकट, अमेरिका में प्राइमरी का आयोजन और भारत में लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी, इन विषयों पर हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। غزہ میں اس سمے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی اسہنیہ ہے۔ بھکمری کا شکار غزہ واسیوں کے لیے اب پینے کے پانی کا گمبھیر سنکٹ پیدا ہو گیا ہے۔ اس بارے میں نزال علیان کی رپورٹ کو سور دے رہے ہیں ساتھی احمد عباس۔
نعم، اذن نحن هنا في مخيم جباليا في احدى المدارس۔
اتری غزہ پٹی کے جبالیا شرنارتھی شیویر میں یو این ایجنسی کے ایک اسکول میں ہم آئے ہیں۔ یہاں بڑی سنکھیا میں فلسطینی شرنارتھی موجود ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کھانا پکانے اور پینے کے لیے پانی کا بندوبست کریں۔ سوئم سیوی کمیٹیاں کہتی ہیں کہ ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے بجلی نہیں ہے اور کنوؤں سے پانی نکالنے والے پمپ بند ہو گئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے پانی کے ابھاؤ کی وجہ سے حالات بے حد کٹھن ہیں اور ان کی زندگی بری طرح سے خطرے میں پڑی ہوئی ہے اور انہیں سہایتا کی سخت ضرورت ہے، جس کا وہ اعلان کر رہے ہیں۔
نحن موجودين في بئر رقم 6 من آبار وكالة الغوث الدولية۔
ایک فلسطینی بزرگ نے دکھایا کہ ہم اس سمے ویل نمبر 6 پر ہیں۔ یہ سنیوکت راشٹر ایجنسی کی طرف سے بنایا گیا کنواں ہے۔ جبالیہ شیویر کے بھیتر اور آس پاس کے علاقوں میں دسیوں ہزار لوگ جنہیں پینے کا پانی اس کنویں سے ملتا ہے، لیکن 5 مہینے ہو رہے ہیں کہ اس کنویں کے لیے 1 لیٹر ایندھن بھی نہیں آ پا رہا، اس لیے سارے لوگ تکلیف میں ہیں۔ 7 اکتوبر سے پہلے یہ کنواں روزانہ 10 گھنٹے کام کرتا تھا، اس کے بعد 4 گھنٹے کام کرنے لگا اور اب ایندھن ختم ہو جانے کی وجہ سے پوری طرح سے بند پڑا ہے۔ ایندھن کا ٹینکر خالی ہے اور اسے چالو کرنے کے لیے ایندھن نہیں ہے۔ اس علاقے کے لوگ پانی کے لیے اس ٹینکر کے سامنے جمع ہوتے ہیں۔ ہم انتراشٹریہ سنستھاؤں سے مانگ کرتے ہیں کہ وہ ہماری سمسیا کو دیکھیں۔ مہیلا نے اپنی پیڑا بیان کی کہ نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ پینے کا پانی ہے، ہم کیا کریں اور کہاں جائیں؟ کہتے ہیں کہ اگر پانی چاہیے تو یہاں سے چلی جاؤ، ہم کہاں جائیں؟ غزہ کے لوگ کیوں جائیں؟ اگر ذرا بھی مان مریادا بچی ہے تو غزہ کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ سمندر اور آسمان سے امریکی ہم پر حملے کر رہے ہیں، 30,000 لوگ مارے جا چکے ہیں، غزہ کے لوگوں پر یہ اتیاچار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک بزرگ نے کہا کہ سہایتا ایجنسیوں سے ہم چاہتے ہیں کہ ایندھن کی سپلائی کریں۔ پانی کی قلت سے ہزاروں لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ ہم سنیوکت راشٹر سنگھ اور وشو سمودائے سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ غزہ کی مدد کریں اور پانی اور دوا بھیجیں۔ جبالیہ سے آئی آر آئی بی کے لیے نزال علیان کی رپورٹ۔
امریکہ میں راشٹرپتی پد کے چناؤ کے لیے پرارمبھک پرکریا آرمبھ ہو چکی ہے۔ وستار سے بتا رہے ہیں سید میسم۔
آج یعنی 5 مارچ کو امریکہ میں راشٹرپتی چناؤ کے اتہاس میں ایک اہم دن مانا جاتا ہے۔ اس دن ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیوں کے انتم امیدوار کا پریچے دینے کے لیے امریکی راشٹرپتی پد کی پرائمری کا سب سے بڑا منچ آیوجت کیا جاتا ہے۔ ڈیموکریٹس کے لیے 15 راجیوں اور 1 ضلع میں 16 پرائمریز آیوجت کی جائیں گی اور ریپبلکن کے لیے 15 راجیوں میں 15 پرائمریز آیوجت کی جائیں گی، تاکہ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں 1648 پرتندیوں اور ریپبلکن نیشنل کنونشن میں 865 پرتندیوں کے اسائنمنٹ کو نردھارت کیا جا سکے۔ آگامی چناؤں میں ریپبلکن پارٹی کی اور سے امریکہ کے پور راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ اور سنیوکت راشٹر میں امریکہ کی پور راجدوت نکی ہیلی میں سے کوئی ایک امیدوار ہوگا، جبکہ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن چناؤں میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سمبھاوت امیدوار ہوں گے، وہ راشٹرپتی پد کے لیے پرتسپردھا کریں گے۔ یہ امریکی راشٹرپتی چناؤ ایک پرتیکول راجنیتک ماحول میں آیوجت کیا جا رہا ہے۔ کئی امریکی ناگرکوں اور راجنیتک ادھیکاریوں نے 6 جنوری 2021 کو کانگریس بھون پر ٹرمپ کے سمرتھکوں کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے اور امریکی سمویدھان کے 14ویں سنشودھن کا حوالہ دیتے ہوئے مانگ کی ہے کہ انہیں اس چناؤ میں بھاگ لینے سے پرتبندھت کر دیا جائے، حالانکہ اس چناؤ میں بھاگ لینے کے لیے انہیں انومتی دے دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے سروسمتی سے ٹرمپ کے خلاف کولوراڈو عدالت کے فیصلے کو خارج کر دیا اور پور راشپتی کو اس راجیہ میں راشپتی پد کی پرائمری پرتسپردھا میں بھاگ لینے کی انومتی دے دی۔ کولوراڈو کے کورٹ نے پہلے ایک ویواداسپد فیصلے میں گھوشنا کی تھی کہ سمویدھان کے الگھن کے کارن 2024 کے چناؤ میں ٹرمپ کی امیدواری پر روک لگا دی گئی ہے۔ حالانکہ امریکہ کے سنگھیہ سپریم کورٹ کے نیایادھیشوں نے فیصلہ سنایا کہ 14th سنشودھن کولوراڈو کو ٹرمپ کو راجیہ میں پراتھمک متدان سے روکنے کی انومتی نہیں دیتا ہے۔ ٹرمپ نے اس فیصلے کے ترنت بعد پرتکریا ویکت کی اور اپنے سوشل نیٹورک پر لکھا، امریکہ کے لیے مہان جیت۔ جیسے جیسے دوڑ بڑھے منگلوار کی اور بڑھ رہی ہے، ٹرمپ نکی ہیلی پر اپنی بڑھت بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پچھلے ہفتوں کے دوران ٹرمپ کے سمرتھکوں نے ہیلی پر نام واپس لینے کی گھوشنا کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا، لیکن ہیلی نے گھوشنا کی ہے کہ وہ جولائی میں ریپبلکن نیشنل کنونشن تک دوڑ میں بنی رہیں گی۔ چناوی ریلیوں میں ٹرمپ نے امریکی ارتھ ویوستھا کی استھتی سدھارنے، اپرواسیوں کو نرواسیت کرنے اور ناٹو کے وت پوشن میں یورپ کی حصے داری بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
اور شوتاؤں، اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا۔ بھارتی راجنیتاؤں کی ٹیکا ٹپنیوں سے آگامی لوک سبھا چناؤں میں گرمی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ نئی دلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
یدیپی بھارت میں لوک سبھا چناؤں کی تاریخوں کا اعلان ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن راجنیتک دلوں پر چناوی رنگ چڑھ چکا ہے اور سبھی دلوں کی تیاریاں اب گتی پکڑ رہی ہیں۔ کہیں راجنیتک دل اپنے پرتیاشیوں کی سوچی جاری کر رہے ہیں تو کہیں چناوی سبھاؤں کا آیوجن کیا جا رہا ہے جس میں ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ کے گاندھی میدان میں 3 مارچ کو وپکشی دلوں کی جن وشواس ریلی ہوئی، جس کے دوران آر جے ڈی نیتا لالو پرساد یادو نے پردھان منتری نریندر مودی پر جم کر نشانہ سادھا۔ انہوں نے ویانگ بھرے شبدوں میں کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی ہر بار پریوار واد کا مدعا اٹھاتے ہیں، کیوں نہیں بتاتے کہ انہیں کوئی سنتان کیوں نہیں ہوئی؟
یہ نریندر مودی آج کل پریوار واد پر حملہ کر رہا ہے۔ ارے بھائی، تم بتاؤ نا کہ تم کو کیوں پریوار میں کوئی سنتان نہیں ہو، تم کو ہوا بتاؤ۔
لالو پرساد یادو کی اس ٹپنی کو لے کر بھاجپا کے انیک نیتاؤں نے کڑا ویروھ درج کرایا ہے۔ بھاجپا نیتا اور کیندریہ منتری گری راج کشور نے نریندر مودی کے پریوار اور ان کے ہندو ہونے پر سوال اٹھانے پر لالو پرساد یادو کی کڑی نندا کی اور کہا کہ مودی راشٹر کے لیے جیتے ہیں اور وہ دیش اور دنیا کے سناتن دھرم کے سمواہک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج 140 کروڑ لوگ پردھان منتری نریندر مودی کا پریوار ہیں۔ پردھان منتری نریندر مودی نے بھی اپنے ورودھ پریوار واد کے چھڑے مدعے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا،
میرا کوئی نجی سپنا نہیں ہوگا، آپ کے سپنے یہی میرا سنکلپ ہوگا، اور زندگی کھپا دوں گا تو آپ کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کے بھوشیہ کو اجول بنانے کے لیے۔
ادھر کانگریس کے پورو ادھیکش ایوم ورشٹھ نیتا راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیائے یاترا مدھیہ پردیش کے راگھوڑ سے چل کر شاجہ پور پہنچی، جہاں انہوں نے روڈ شو کیا اور پردھان منتری نریندر مودی پر جم کر پرہار کیا۔ उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा जातिवाद और धर्मवाद को बढ़ावा देकर लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है।
जो बीजेपी धर्म को धर्म से लड़ाती है, जात को जात से लड़ाती है, भाषा को भाषा से लड़ाती है, उसके खिलाफ हमने भारत छोड़ो यात्रा की।
लोकसभा के चुनाव ऐसे समय में होंगे जब मणिपुर, पश्चिम बंगाल सहित देश के कुछ भागों में हिंसक घटनाएं हुई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए नागरिकों की सतर्कता का प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव कराना है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, सभा के इस भाग में हम आपके लिए दो साप्ताहिक कार्यक्रम पेश करेंगे, कुरानी किस्से और जायोनी आतंकवाद। तो पहले पेश है कार्यक्रम कुरानी किस्से।
कुरानी किस्से। दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरह हश्र की छठी और सातवीं आयतें कब नाजिल हुई थीं। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पवित्र नगर मक्का से मदीना पलायन करने के बाद इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए थे और वे जानते थे कि शीघ्र ही इस नगर को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना होगा, जैसे कि मक्का के काफिर वाने केश्वरवादी यहूदियों से समझौता कर सकते हैं और अंसार तथा मुजाहिदीन के विषय को लेकर खुद मुसलमानों को मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। इस आधार पर पैगंबर इस्लाम ने पवित्र नगर मदीना की स्थिति को सामान्य रखने के लिए एक संधि तैयार की। इस संधि के अनुसार पवित्र मदीना में रहने वाले विभिन्न गुटों के अधिकार निर्धारित कर दिए गए ताकि हर प्रकार के संभावित विवाद को रोका जा सके। पैगंबर इस्लाम द्वारा उठाया गया ये बेहतरीन कदम था। इसके अलावा पैगंबर इस्लाम ने यहूदियों के बनी नुजैर, बनी कुरैजा और बनी कैनुका कबीलों से अलग अलग संधि की। इन समझौतों पर यहूदी कबीलों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे।
पैगंबर इस्लाम की इस्लामी सरकार में यहूदियों को पूरी सुरक्षा और उनके नागरिक अधिकार प्राप्त थे। इसके मुकाबले में यहूदी इस बात के प्रति वचनबद्ध हुए थे कि वे पैगंबर इस्लाम के दुश्मनों के साथ किसी प्रकार की कोई सहकारिता नहीं करेंगे और न ही इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेंगे, और अगर इसके विपरीत उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें दंडित करने के लिए पैगंबर इस्लाम जो भी उचित समझेंगे उसमें पूरी तरह स्वतंत्र हैं।
यहाँ पर इस बात का उल्लेख जरूरी है कि जब तक यहूदियों ने पैगंबर इस्लाम के साथ किए गए समझौते पर अमल किया तब तक उन्हें पूरी तरह नागरिक अधिकार प्राप्त रहे और उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। जब पैगंबर इस्लाम पवित्र नगर मक्का से मदीना पलायन करके गए तो उनके आरंभिक वर्षों में मुसलमानों के साथ यहूदियों के संबंध सामान्य थे, परंतु कुछ समय बीत जाने के बाद यहूदियों का रवैया बदल गया और उन्होंने गुप्त रूप से और कभी कभी खुलकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम आरंभ कर दिया।
जंग उहद में मुसलमानों के हार जाने के बाद यहूदियों ने विस्तृत पैमाने पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रचार आरंभ कर दिया। यहूदियों के बनी नुज़ैर कबीले के कुछ गणमान्य लोग गुप्त रूप से मक्का जाने और काफिर व मुशरिक कबीलों से मिलने लगे और साथ ही उन्होंने मदीना पर हमला करने के लिए काफिरों को प्रोत्साहित भी करने लगे। यहूदियों का ये व्यवहार मुसलमानों से उनकी दुश्मनी का कारण बना।
यहूदी इस्लाम की शिक्षाओं को मूल्यहीन दर्शाने के लिए किसी प्रकार के प्रयास में संकोच से काम नहीं लेते थे। इस प्रकार की स्थिति में पवित्र कुरान और इस्लामी शिक्षाओं का प्रचार एवं प्रसार करने वाले मुसलमान मदीना के देहातों की ओर जा रहे थे। उनमें से 6 को रजिया नामक क्षेत्र में गिरफ्तार करके शहीद कर दिया गया। शहीद होने वालों में 2 का संबंध बनी आमिर कबीले से था और बनी नुज़ैर कबीले से उसके संबंध थे।
इस्लाम ने बनी आमिर कबीले की मदद करने और उसे दिया दिलाने के लिए मुहाजिरीन और अंसार के कुछ लोगों को बनी नुज़ैर के किले में भेजा और उन लोगों ने बनी नुज़ैर कबीले के घटक बनी आमिर कबीले के 2 मुसलमानों के शहीद किए जाने की सूचना दी। बनी नुज़ैर कबीले के यहूदियों ने जब ये खबर सुनी तो वे इस सोच में पड़ गए कि मौके का फायदा उठाकर पैगम्बर इस्लाम की भी हत्या कर दी जाए। पैगम्बर इस्लाम किले की दीवार की छाया में बैठे हुए थे कि यहूदियों ने अपने शैतानी षड्यंत्र को व्यवहारिक बनाना चाहा, परंतु महान ईश्वर की मदद से उनकी ये चाल नाकाम हो गई।
जब ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि यहूदियों ने संधि का उल्लंघन किया है, पैगम्बर इस्लाम की हत्या का षड्यंत्र रचा और बनी नुज़ैर कबीले का अस्तित्व इस्लाम और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो पैगम्बर इस्लाम ने उन्हें 10 दिन का समय दिया कि वे मदीना छोड़ दें। परंतु मदीने के मुनाफिकों के सरगना अब्दुल्ला बिन अबिया के उकसाने में आकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पैगम्बर इस्लाम ने मजबूर होकर मुसलमान सैनिकों के माध्यम से उनके किले को घेर लिया। इस दौरान अब्दुल्ला बिन अबिया ने भी कोई मदद नहीं की। इस प्रकार यहूदी मदीना छोड़ने पर मजबूर हो गए, परंतु जाने से पहले उन्होंने पैगंबर इस्लाम से अपने साथ अपनी संपत्ति भी ले जाने की मांग की। पैगंबर इस्लाम ने इस पर सहमति जताई और कहा कि हथियारों को छोड़कर दूसरी चीजों को तुम ले जा सकते हो।
बनी नुज़ैर कबीले के यहूदियों ने अपना माल ले जाने के लिए अधिक से अधिक कोशिश की। उसके बाद घर और जो चीजें बच गईं उन सबको अपने हाथों से तबाह कर दिया। कुछ यहूदी शाम चले गए, जबकि हुई बिन अख्तब सहित कुछ दूसरे यहूदी खैबर चले गए। बनी नुज़ैर के यहूदियों के मदीना से चले जाने के बाद उनके बाग, खेत, घर और कुछ दूसरे सामान मदीना में ही रह गए।
जब मुहाजिर और अंसार के कुछ मुसलमानों ने यहूदियों द्वारा छोड़े गए खेत, घर और दूसरी संपत्तियों को देखा तो सोचा कि ये भी माल गनीमत है और इन्हें भी मुसलमानों के माध्यम बांटा जाना चाहिए। ये सोचकर वे लोग पैगंबर इस्लाम की सेवा में आए और कहा, माल गनीमत की भांति यहूदियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को भी बांटने का काम उनके हवाले कर दे। ये वो मौका था जब पवित्र कुरान के सूरह हश्र की 6 और 7 आयत नाजिल हुई। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सफलता जंग के बिना ईश्वरीय मदद से हासिल हुई है और इसे हासिल करने के लिए मुसलमानों ने कोई प्रयास नहीं किया है, इसलिए ये सारी संपत्ति पैगंबर इस्लाम को मिलेगी और वो जो उचित समझेंगे उसके हिसाब से बांटेंगे। पैगंबर इस्लाम ने भी उस माल को गरीब मुहाजिरीन और जरूरतमंद अंसार के बीच बांट दिया।
पवित्र कुरान के सूरह हश्र की 6 आयत इस्लामी अर्थव्यवस्था के एक सिद्धांत को बयान करती है और वो ये है कि निजी माल के स्वामित्व का सम्मान करते हुए इस प्रकार कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए कि माल व दौलत को किसी एक गिरोह के साथ में सीमित नहीं होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाएं और एक गुट की संपत्ति लेकर दूसरे गुट को दे दें, बल्कि इससे तात्पर्य है कि अगर खुम्स व ज़कात जैसे तरीकों से माल हासिल किया जाए और इस्लामी कानूनों को सही तरह से लागू किया जाए तो अपने आप इस प्रकार का नतीजा देगा कि व्यक्तिगत प्रयासों का सम्मान होगा और सामूहिक हितों की आपूर्ति भी होगी और समाज में वर्ग भेद को रोका जा सकेगा।
महान ईश्वर पवित्र कुरान के सूरह हश्र की छठी और सातवीं आयतों में ये कहता है कि जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल को दिया है उसे हासिल करने के लिए तुम लोगों ने ना ऊंट इस्तेमाल किया ना घोड़े, मगर अल्लाह जिस चीज़ को चाहता है उसका मालिक पैगंबर को बना देता है और अल्लाह हर काम पर पूर्ण सक्षम है। और अल्लाह ने उस गांव वालों का जो माल अपने रसूल को दे दिया तो वो अल्लाह उसके रसूल नज़दीकी रिश्तेदारों अनाथों दरिद्रों और रास्ते में फंस जाने वाले ज़रूरतमंदों का है ताकि तुम में से जो धनाढ्य लोग हैं ये संपत्ति उन लोगों के पास ना रहे। और पैगंबर जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज़ से मना कर दे उससे मान जाओ और अल्लाह से डरो कि वो कड़ा दंड देने वाला है।
दोस्तों, पवित्र कुरान की आयतों की रोशनी में यहाँ हम कुछ बिंदुओं का उल्लेख जरूरी समझते हैं। पहला बिंदु माल गनीमत के बारे में है। मुसलमानों और गैर मुसलमानों के मध्य होने वाले युद्ध में दुश्मन का जो भी माल मुसलमानों के हाथ लगता है यानी मिलता है उसे माल गनीमत कहते हैं और उसे जंग में भाग लेने वाले मुसलमान योद्धाओं के मध्य बराबर बराबर बांटा जाता है। जो मुसलमान युद्ध में शामिल नहीं होते हैं उन्हें माल गनीमत नहीं दिया जाता। तलवार भाला और घोड़ा आदि जो भी युद्ध में मिलता है उसे माल गनीमत कहा जाता है, मगर जो माल जंग किए बिना प्राप्त हो जाए उसे माल गनीमत नहीं कहते हैं और न ही माल गनीमत के रूप में उसका बंटवारा मुसलमान योद्धाओं के बीच होता है, बल्कि वो अल्लाह और रसूल का होता है और पैगंबर इस्लाम अपनी इच्छा अनुसार उसे जरूरतमंद लोगों में बांटते हैं।
यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो माल युद्ध के बिना प्राप्त हो जाता है वो माल पैगंबर इस्लाम का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैगंबर इस्लाम को उसे व्यक्तिगत रूप में खर्च करने का अधिकार है, बल्कि उसे भी ज़रूरतमंद और आवश्यकता रखने वाले मुसलमानों के मध्य अपनी इच्छा अनुसार वे बांट सकते हैं। पवित्र कुरान के सूरह हश्र की सातवीं आयत में महान ईश्वर ने कहा है कि जो भी पैगंबर इस्लाम तुम्हें दे दे उसे ले लो और जिस चीज से मना कर दे उससे मान जाओ।
इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं कि आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ भी है सब अल्लाह उसके रसूल और इन दोनों का अनुपालन करने वाले मोमिनों का है, तो इस दुनिया से जो कुछ काफिरों मुशरिकों अत्याचारियों भ्रष्टाचारियों और उसके रसूल के विरोधियों के हाथ में है तो उन्होंने मोमिनों के हक में अन्याय व अत्याचार किया है और ये चीजें मोमिनों की हैं और अगर जंग में ये चीजें मोमिनों को मिल जाती हैं तो वास्तव में जिसकी चीज थी उसे मिल गई। सारांश ये कि माल गनीमत असल में मोमिनों का माल था जो उन्हें मिल गया, इसमें काफिरों व अनेकेश्वरवादियों आदि पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं है।
यहाँ पर एक अन्य बिंदु का उल्लेख जरूरी है, वो ये है कि मोमिनों व मुसलमानों के दुश्मनों से होने वाली जंग में जो माल प्राप्त होता है उसी को माल गनीमत कहते हैं, लेकिन अगर मोमिनों के दो गुटों के मध्य लड़ाई हो जाए तो एक दूसरे का ना तो माल लूटना चाहिए और ना ही उसको माल गनीमत कहा जाएगा। अगर मोमिनों के एक गुट ने दूसरे गुट का माल लूट लिया है तो ये कार्य सही नहीं है और ना ही लूटी हुई वस्तु का इस्तेमाल सही है।
तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ज़ायोनी आतंकवाद।
दोस्तों, कार्यक्रम ज़ायोनी आतंकवाद की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मरियम मेहरदादी और गायम रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए।
अवैध ज़ायोनी शासन के गठन के समय से ही अमेरिका की ओर से इस अवैध शासन की हर प्रकार से सहायता की जा रही है, जो अब भी जारी है। इस सहायता में कूटनीतिक मदद भी शामिल है। इसराइल की सहायता करने में संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी इतने अधिक उत्साहित दिखाई देते हैं कि कभी कभी वे अपने ही देश की जनता के हितों को उसके सामने अनदेखा करते हुए दिखाई देते हैं। शायद यही वजह है कि अवैध ज़ायोनी शासन के अत्याचारों की गहन जांच के लिए कभी कोई सहमति आधिकारिक रूप में नहीं बन पाई। अमेरिका के खुले समर्थन के कारण ये अवैध शासन विश्व के स्वतंत्र देशों को भी हमले की धमकियां देता रहता है। इस शासन की इन धमकियों के सामने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रतिक्रिया नहीं दे पाती।
अमेरिकी सरकार अपने करदाताओं की राशि में से एक बहुत बड़ी रकम इसराइल को सैन्य और असैन्य सहायता के रूप में प्रदान करती है। यह अमेरिका की ओर से ज़ायोनी शासन को दिया गया अनुदान होता है, अर्थात इसका उसे कोई हिसाब नहीं देना होता है। अवैध ज़ायोनी शासन अमेरिका से प्रतिवर्ष $3 अरब की सीधी सहायता हासिल करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से दी जाने वाली विदेशी सहायता का ये पांचवा हिस्सा है। विशेष बात यह है कि अमेरिका की ओर से इसराइल को दी जाने वाली सहायता का कोई हिसाब किताब तेल अविव को नहीं देना होता है। उसको ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि इस राशि को उसने कैसे और कहां इस्तेमाल किया।
वित्तीय और सैन्य सहायता के अतिरिक्त अमेरिका इसराइल को जो सहायता करता है उसमें उसकी ओर से की जाने वाली कूटनीतिक सहायता भी शामिल है। ये वो सहायता है जिसमें अमेरिका बहुत अधिक पक्षपात करता है। अमेरिका की ओर से अवैध ज़ायोनी शासन के समर्थन में किए जाने वाले पक्षपात को इस बात से समझा जा सकता है कि वॉशिंगटन ने सन 1982 के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ज़ायोनी शासन के विरुद्ध पेश किए गए 32 प्रस्तावों को वीटो किया है। इन प्रस्तावों में ज़ायोनी शासन के क्रियाकलापों की आलोचना की गई थी। ये संख्या सुरक्षा परिषद के वीटो का अधिकार प्राप्त अन्य सदस्यों की तुलना में बहुत अधिक है।
अरब देशों का ये प्रयास रहा है कि अवैध ज़ायोनी शासन के परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लाया जाए। अमेरिका के आशीर्वाद के कारण इस प्रयास को अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। सन 2000 में कैंप डेविड समझौते की वार्ता में भाग लेने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि बहुत से अवसरों पर अमेरिका इसराइल के एक विश्वसनीय वकील की भूमिका निभाता है। वॉशिंगटन ने तेल अविव को कुछ ज्यादा ही फ्री हैंड छोड़ रखा है। यही कारण है कि वो फिलिस्तीनियों के विरुद्ध खुलकर अत्याचार करता रहता है और कोई भी उससे कुछ नहीं कहता। कहना तो दूर की बात, किसी में भी इतना साहसी नहीं है कि वो इस बारे में सोच भी सके।
जरूरत पड़ने पर अमेरिका और पश्चिम की गुप्तचर सेवाएं इसराइल की गुप्तचर सेवा मोसाद के लिए गोपनीय सूचनाएं तथा महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाती हैं। ये गुप्तचर सेवाएं मोसाद की किसी भी नई कार्रवाई के लिए अपने लॉजिस्टिक अनुभवों को उसके हवाले कर देती हैं। यही कारण है कि मोसाद की कार्यवाहियां अमेरिका की गुप्तचर सेवाओं के साथ सहयोग द्वारा अंजाम दी जाती हैं। इस्लामी देशों के वैज्ञानिक प्रगति को रोकने के लिए वहां के वैज्ञानिकों को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से पिछले कुछ दशकों से अवैध ज़ायोनी शासन की गुप्तचर सेवा मोसाद अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रही है। इसराइल की यह हार्दिक इच्छा है कि रक्षा और परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस्लामी देश बिल्कुल भी विकास न करने पाएं, बल्कि इस क्षेत्र में वे दूसरों पर निर्भर रहें।
संयुक्त राज्य अमेरिका तीन औचित्यों के साथ अवैध अनुशासन का समर्थन करता है। अमेरिका की ओर से अनुशासन की जो खुलकर सहायता की जाती है उसके लिए वॉशिंगटन की ओर से जो औचित्य पेश किया जाता है वो ये है कि वो एक छोटा और कमजोर देश है जो परिवेष्टन में है। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि अवैध अनुशासन एक शक्तिशाली सेना का स्वामी है, उसके पास आधुनिक और विध्वंसक हथियार है। यही कारण है कि सन 1947 और 1949 में अरबों के साथ युद्ध में उसको विजय हासिल हुई। इसे ये पता चलता है कि इस अवैध शासन की खुलकर सहायता करने का अमरीका ये तर्क बिल्कुल भी सही नहीं है।
अमेरिका की ओर से ज़ायोनी शासन की सहायता के लिए जो दूसरा औचित्य पेश किया जाता है वो ये है कि उदारवादी लोकतंत्र का समर्थन करना। हालांकि फिलिस्तीनियों के साथ ज़ायोनी शासन का जो व्यवहार रहा है वो तो इस अमेरिकी दावे के बिल्कुल ही विपरीत है। अवैध ज़ायोनी शासन को पूरी दुनिया में एक जातिवादी शासन के रूप में देखा जाता है। इस शासन में नागरिकता का अधिकार रक्त संबंधों पर निर्भर करता है, अर्थात एक विशेष जाति से संबंधित होना जरूरी है। केवल विशेष जाति के आधार पर ही नागरिकता देना इस शासन की मुख्य नीति है। इस बात को समझने के लिए ये बताना जरूरी है कि सन 1949 से पहले तक अवैध ज़ायोनी शासन के भीतर अरब लोगों की संख्या लगभग 13 लाख थी।
ज़ायोनी शासन इस अरब निवासियों के साथ दूसरी श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार करता है। ज़ायोनियों की जातिवादी विचारधारा को अच्छी तरह से समझने के लिए इस शासन के संसद के एक फैसले को सामने रखा जा सकता है। 31 जुलाई सन 2003 को क्लेंसेट ने उन फिलिस्तीनियों के बारे में अपना फैसला सुनाया था जिन्होंने यहूदियों के साथ शादी कर ली है। इस फैसले के अनुसार इन फिलिस्तीनियों को ज़ायोनी शासन की नागरिकता नहीं दी जाएगी और उनके जीवन साथियों को अवैध ज़ायोनी शासन के भीतर रहने की अनुमति नहीं होगी।
ज़ायोनियों के अमानवीय कामों के समर्थन में अमरीका का तीसरा औचित्य पिछले अपराधों के लिए मुआवजे का दिया जाना है। इस बारे में सामान्यता दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा किए जाने वाले यहूदी विरोधी कामों को पेश किया जाता है। ये वे घटनाएं हैं जिनको बाद में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया जिसके परिणाम स्वरूप मुआवजे के रूप में अवैध ज़ायोनी शासन को खूब पैसा मिल रहा है।
इसके अंतर्गत होलोकॉस्ट जैसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके स्वयं को अधिक से अधिक अत्याचारग्रस्त दिखाना था ताकि वो मुआवजे या क्षतिपूर्ति के रूप में ज़ायोनियों को बहुत अधिक पैसा मिल सके। क्षतिपूर्ति वसूल करने के लिए ज़ायोनियों ने ये थ्योरी गढ़ी कि पूरे इतिहास में यहूदियों ने बहुत कठिनाइयां सहन की हैं। ऐसे में भविष्य में उनको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने का एकमात्र मार्ग यह है कि उनके लिए एक अलग स्थान चुना जाए जहां वे एकजुट होकर जीवन व्यतीत कर सके। अमरीकी तर्क के अनुसार इन सभी कारणों की वजह से यहूदियों को व्यापक स्तर पर सहायता की जानी चाहिए।
अवैध ज़ायोनी शासन का समर्थन करना संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के अटल उसूलों में शामिल है। अमेरिका में चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो सबने इसराइल के समर्थन को अपनी कार्यसूची में सर्वोपरि कर रखा है। इसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स सभी मौजूद हैं। इस हिसाब से पिछले 70 वर्षों से भी अधिक समय से अमेरिका इसराइल का हर प्रकार से समर्थन करता आ रहा है।
ईरान के काजरून विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद पार्स कहते हैं कि अवैध ज़ायोनी शासन की प्रवृत्ति ही ऐसी है जिसके आधार पर दुनिया भर के देशों और राष्ट्रों को उनके प्रभाव में रहना चाहिए। नस्ली वरीयता के स्वामी होने के कारण जायनी मानते हैं कि उनको किसी के भी विरुद्ध हिंसा और अत्याचार करने का पूरा अधिकार है। ये काम वे दशकों से फिलिस्तीनियों के विरुद्ध करते आ रहे हैं। मोहम्मद पार्स आगे कहते हैं कि जानियों के एक नेता मुनरचिम बेगिन का मानना था कि या तो मेरा साथ दो अन्यथा तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। इस हिसाब से दुनिया के सारे राष्ट्रों और देशों को जानियों का अनुसरण करने वाला होना चाहिए।
ऐसे में कहा जा सकता है कि इसराइल के गठन के समय से ही अमेरिका हर प्रकार से उसका समर्थन करते हुए उसको मजबूत बनाने के प्रयास कर रहा है। इसका एक उदाहरण दिसंबर सन 1993 में अवैध जायोनी शासन तथा वेटिकन के बीच संबंधों की स्थापना है। सदियों तक एक दूसरे से गहरी दुश्मनी रखने वाले जायोनी हितों के लिए अमरीकी प्रयासों से निकट हो गए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थक होने के कारण अमरीकी सरकार को भी सरकारी आतंकवाद के दोस्त के रूप में देखा जा सकता है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔